انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کو خوب نوازا جائے، خوب انعامات اس کو دیے جائیں، لیکن وہ انعامات وہ ملتے ہیں انسان کو جب وہ تھوڑی سی فکر کرتا ہے اور جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اسی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے. اصل انعامات ملیں گے آخرت میں مرنے کے بعد، دنیا میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تیار فرمائی ہے وہ ایک جنتی کی کو جو نعمتیں مل رہی ہیں اس کو بھی پورا نہیں کر سکتی ہے پوری دنیا مل کر کے. سارے انسانوں کی جو بات ہے اس کو کیسے پورا کرے گی یہ جگہ دنیا جو ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تیاری کے لیے اور امتحان ہی کے لیے رکھی ہے. لیکن اسی امتحان کے لیے نعمتیں یہاں بھی ملتی ہیں. یہاں جو نعمتیں ملتی ہیں اس میں امتحان بھی ہوتا ہے، اور امتحان یہی ہوتا ہے آدمی ان نعمتوں میں اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالی اس چیز کو بدن پسند نہیں فرماتے. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْتَكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. لوگوں کی جو معیشت بڑھیا ہوتی ہے نا، اور خوب پیسے آ گئے، خوب چیزیں آ گئیں، آدمی میں اکڑ پیدا ہو جاتی ہے اور کہے کہ بھائی میں ماشاءاللہ کتنا عقل مند ہوں، کتنی سمجھ ہے میرے اندر. نہیں، بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اور اتنا بھی نہیں ان کو ملتا کہ وہ اپنے گھر کا پیٹ ہی بھر لیں. سمجھے؟ تو نہ یہ عقل مندی ہے اور نہ یہ آدمی کی جدوجہد ہے. دونوں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی وہ امتحان کے لیے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ وہ اس بات کا اعتراف کرے کہ وہ نعمتیں سب اللہ کے پاس سے آ رہی ہیں، وہ اکڑ میں نہ آوے. یہی سوچنے لگتا ہے کہ یہ میری عقل مندی، سمجھے، اور میری سمجھداری کی وجہ سے ہوا. کتنا قارون کو وہ دیا خزانہ، اور وہ کہتا ہے مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی، اس وجہ سے ملا، میرے پاس بہت سمجھداری ہے، بہت علم ہے. ارے علم والے بہت ایک سے ایک پڑے ہوئے ہیں. ایک بیچارہ بہت وہ پڑھنے لکھنے میں بہت دماغ لگانا پڑتا ہے، تو وہ اس کی جو آخری ڈگری ہوتی ہے وہ پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے پڑھنے لکھنے میں. तो वो की वहां से रुड़की से, और फिर वो एक तो वही बहुत दिनों में हुई, बजाय 3-4 साल के 5-6 साल लग गए, और जब लग हो गई तो उसके बाद फिर वो तलाश करे अपनी नौकरी तो वो ना मिले, तो था वो बेचारा ईमान से भी महरूम था, गैर मुस्लिम था, वो अपनी अपने को हलाक कर लिया। 30 साल की उम्र में आदमी जिंदगी भर मेहनत कर रहा है, फिर अपने को कैसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए आसान ये है कि अपने को हलाक कर लो। अब बताइए कितनी बड़ी नाकामी है कि जिंदगी भर कोशिश में लगा रहा और आखिर में अपने को हलाक कर लिया, कुछ मिला ही नहीं। तो अब ये, और एक दूसरी तरफ है, एक आदमी है बिल्कुल अकल से पैदल है और उसके ऊपर माल आए चला जा रहा है, समझे, उसे पता ही नहीं है कि कहां से आ रहा है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तकसीम है। इतनी तो बात है कि हम इसका एतराफ करें, हमारे रब ने हमको दिया है। तो ये काम हमारे दीन की जद्दोजहद का और मेहनत का, ये एक तरफ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी बड़ी नेमत हमको अदा फरमाई कि इसका तजुर्बा हुआ कि जहां भी ये मेहनत की गई और लोग दीन की तरफ को मुतवज्जे हो गए अल्लाह के फजल करम से, लेकिन इसी में फिर गलतफहमी हो जाती है कि भाई मैंने तो माशाल्लाह ऐसा किया और हमारी जमात ने ऐसा किया और यही असल है, समझे, तो सारा का सारा मैं मेरी जमात उसी का गर्रा दिमाग में आ गया। अच्छा चलो आ गया, दूसरों की नकीर करने लगे। अरे दूसरे लोग भी मेहनत कर रहे हैं, नहीं हमारे काम की बुनियाद ही इस पर है, एक एक की खुशामद की जाती है, एक एक की खुशामद की जाती है, और हर आदमी को अल्लाह ने सलाहियतें दी है, वो दुनिया में लगाता रहता है, तो वो जो उसको सलाहियत दी है उसकी तारीफ की जाती है, समझे। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु तो अब वो बासलाहियत थे, उनके भाई से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे इतना अकलमंद आदमी बताइए, हम तो उसकी बड़ी कदर करते, हालांकि कितनी तकलीफ पहुंचाई उन्होंने, खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदारे मुबारक शहीद हुए और बहुत बहुत नुकसान हुआ उहद में मुसलमानों का, लेकिन फिर भी उनकी सलाहियत की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा आदमी उसको बता दो, कोई दूसरा होता तो फौरन उसको कत्ल का हुक्म देता, अरे हम तो उसकी बड़ी कदर करते। और वो भाई उनको वहां से समंदर के पास से ले आया वापस, और वो कह गए वो मुझे मार डालेंगे, मैं तो नहीं जाता। नहीं नहीं तुम्हें गलत फहमी है। और वो आए तो दूर से ही अपनी चादर बिछा दी जिसको ओढ़े हुए थे, और उस पर बिछाया, और अब वो एकदम हैरान के बताइए, मैंने इतना नुकसान किया इनका और मेरी ये कदर कर रहे हैं। तो फिर वाकई उन्होंने वो सारी सलाहियत इस्लाम के लिए झोंक दी। जहां जाते थे तो मालूम हुआ कि वो आदमी उनकी दहशत से गिर पड़ता था। जो खालिद आ गए वो गए काम से, अरे लोग ऐसे डरने लगे थे, पूरी दुनिया के लोग, कि सलाहियत थे, तो वो सलाहियत इधर को आकर के लग गई। वो अल्लाह सुभाना ताला ही उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमें तो भाई हर एक की कदर करनी है, तो हम कदर करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह सुभाना ताला हमारे लिए खैर के फैसले फरमाएंगे। तो हमें तो एक एक आदमी को जोड़ना है, एक एक आदमी को दीन की मेहनत से जोड़ना है और कदर ही करनी है। हमें याद है कि वो दीन में मुंशी बशीर साहब, ओहो इतनी कदर करते थे हम लोगों की और बहुत खुश होते थे देख करके। हालांकि हम लोग तो कोई दीन के पढ़े हुए लोग नहीं, लेकिन फिर भी आओ जी आहवा आहवा ऐसा कहते थे, एकदम तबीयत जो है बशाश हो जाती थी हमारी। और कहें कि भैया ये है कदर करने वाले। तो वही चीज असल में हमारे अंदर हमारे दिल वसी होना चाहिए। एक एक आदमी के अंदर अल्लाह सुभाना ताला ने सलाहियत रखी है, उसको बस दीन की तरफ को लगाना है, बस इतनी सी बात है। वो अपनी तरफ को निस्बत करने के बजाय आदमी अपनी तरफ को निस्बत करता रहता है, मैं इतना अकलमंद, मैं इतना समझदार और इतना मेहनती, वो सब ठीक है, लेकिन किया अल्लाह ने भाई इसका एतराफ करना है, यही ईमान का तकाजा है। तो वो काम के अंदर भी यही करना है कि हम काम करेंगे, पूरी मेहनत सही तरतीब पर करेंगे, समझे, लेकिन एक एक आदमी की कदर ही करनी है और उसको मुस्तकिल जोड़ने की फिक्र में ही लगे रहना है। काम को सही गलत रुख के ऊपर नहीं ले जाएंगे, काम सही रुख पर ही करना है, लेकिन इंसानों की कदर करनी है। तो वो कदर होगी तो अल्लाह सुभाना जब कदर जब ही होती है जब आदमी के अपने अंदर या अपने आप को वो तवाजो के ऊपर लेकर के आवे, समझे। अच्छा तवाजो इसी को कहते हैं कि अपने ईमान वाले भाई को अपने से बेहतर समझना, समझे, यही तवाजो कहलाती है। हालांकि जिसकी हम कदर कर रहे हैं दावत के काम में हमने ही उसको लगाया है और वो जूनियर है, बहुत नया है, लेकिन फिर भी हम उसकी कदर करें तो ये हमारे लिए तवाज़ो की बात होगी। और अल्लाह सुभाना ताला को इंसानों के लिए तवाज़ो बहुत पसंद है, समझे, और तकब्बुर जो है वो बिल्कुल नापसंद है। तकब्बुर यही है कि मैं दूसरा तो कुछ है नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, ये चीज बिल्कुल नापसंद है। तो अब ये आसान इतना है, तकब्बुर करना है मुश्किल और तवाज़ो करनी होती है आसान, समझे। तो आसान वाला काम हमको दिया अल्लाह ने, हम अपने आप से तवाज़ो में रखें, खूब मेहनत करें, खूब अपना जद्दोजहद करें और फिर अपने अंदर तवाज़ो को पैदा करें। तो ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह खुद बहुत आसानी के साथ होती है जब हम एक एक आदमी की कदर करेंगे, समझे, और एक एक आदमी को अल्लाह के रास्ते में यानी जो कुछ भी उसने मेहनत की है उसके बारे में उसको कहेंगे कि भाई आप माशाल्लाह कितना काम हो गया। तो हर एक की कदर करने की जरूरत है। तो भाई उसी फिक्र के लिए हम सब यहाँ पर इस वक्त जमा हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो थोड़ी सी कारगुजारी रह गई थी, वो भी हो जाए अब सब तकरीबन मौलाना, अच्छा आ जाए, हाँ दो जगह की रह गई है तो वो यानी आप भी रहेंगे, तो पता नहीं तबीयत कैसी है उनकी। किसी को भेज दें, वो कहाँ गए, बादशाह
बाद में। मालूम कर रहे हैं।
हाँ देख सकते देख रहेगा करके
नहीं, ये मुनव्वर पाशा साहब और डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब भाई साहब साहब की तजवीज वाले हजरत भी आगे आ जाए।
हाँ इधर इधर आगे आ जाए तो वो
भाई अहमद हुसैन साहब भाई साहब
बुला लीजिए बुला लीजिए सब सब साथियों को।
कर्नाटक वाले आ जाए जिनको कारोबारी सुनानी आगे आ जाए
आ जाओ।
दिल्ली वाले तैयार
कर्नाटक और दिल्ली की कारगुजारी है गई वो जरा हो जाए। आए भाई कर्नाटक वाले आइए फारूक साहब तो आते रहेंगे आप सुना दीजिए। अच्छी बात अच्छा आ रहे थे
आ रहे
हैं अच्छा। तो भाई दोस्त और बुजुर्गो ये कारगुजारी भी असल में किसी के लिए होती है ताकि हमारी फिक्रों के अंदर इजाफा हो। ये देखना चाहिए कि कितना काम बाकी रह गया है। कारगुजारी होती है कि हमने इतना काम कर लिया लेकिन असल उसके पीछे जो मकसद होता है कारगुजारी के पीछे वो ये होता है कि कितना काम बाकी रह गया। अब हम ये बताएंगे कि हमने अपने महल्ले से जो है तीन जमातें निकाल दी, महीने में चार जमातें निकाल दी, अब एक महल्ले में 500 बालिग मर्द रहते हैं एक उस मस्जिद के चारों तरफ, तो चार जमातें निकाल दी, हर हफ्ते एक जमात निकाली तो कुल 40 आदमी गए। तो इसका मतलब यह हुआ 460 नहीं गए समझे। तो ये तो देखते नहीं कि 460 नहीं गए और हम तो हर हफ्ते हमने जमात निकाली, कितना बड़ा तीर मार लिया। ये मकसद होता है कि मैदान इतना है और मैदान मेहनत इतना सारा है और वो अभी तक कवर नहीं हुआ है। ये कारगुजारी इसके लिए होती है कि इतना काम और बाकी रह गया है, उसकी तरफ को देखना चाहिए। उम्मत कितनी बड़ी है, कितनी सारी है और कितने लोग अभी फिक्रों से रह गए समझे। एक तो होता है कि बिल्कुल दीन की तरफ मुतवज्जे ही नहीं है और दूसरी चीज ये होती है कि आदमी को गलतफहमी हो जाती है कि मैं तो दीनदार हूं, नमाज पढ़ता हूं और रोजे रखता हूं और मैं दीनदार हूं। अच्छा और दीन की जो असल जो इम्तिहान होता है तो वो तो आपस के मामला से होता है। एक तरफ अल्लाह का हमारे ऊपर हक है कि हम उसकी इबादत करें और जैसा उसका हक है वैसी इबादत करें, और फिर दूसरे सारी मखलूक के हमारे ऊपर हुकूक है तो वो सब हायल है और इबादत भी करते हैं, सिर्फ वो जो बचपन में एक आदत हो गई है बस वो कर लेते हैं, उसके अंदर खुशू पैदा हो और जैसा हमसे चाहा जा रहा है वैसी करें। तो तबलीग में तो इसी बात की जद्दोजहद की जाती है, मेहनत की जाती है, तो वो तो कुछ हुआ नहीं। और गलतफहमी ये हो गई कि हम दीनदार हैं तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है उसको समझाना, यानी जो जाग रहा है उसको जगाना बहुत मुश्किल, जो सो रहा है उसको जगाना आसान होता है। तो ये जो गलत फहमी में है वो तो ज्यादा हुआ है उसको जगाना है। तो भाई इसके लिए یعنی یہ جماعتوں کے اندر جانا ہوتا ہے اور محنت ہوتی ہے, تو ہم فکر لیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے اندر خود بخود پیدا ہوں گی. تو یہ جو باقی رہ گئی ہے وہ کر لیں پھر انشاءاللہ.